हेलो गाइस,
व्हाट इज अप।
मेरा नाम है रोहित
और मैं हूं आयुष।
WWE हो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग,
ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट,
रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला,
क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा।
वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले तो मुझे बताओ, रेसलमेनिया के लिए आपकी हाइप और जो बिल्ड है वो देख के आपको कैसा लग रहा है? आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि फाइनली वो मोमेंट आता है जब रोमन रेंस एंड द रॉक कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के आमने सामने थे, और आज की स्मैकडाउन से ऑफिशियल हो गया है नाइट वन के लिए टैग टीम मैच रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे अच्छे से, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर शायद एक चीज़ बहुत सारे लोगों से नोटिस नहीं हुई है, और वो शायद वो चीज़ है जिससे हमको ऑलरेडी पता लग गया है कि रेसलमेनिया के नाइट वन और नाइट टू के जो रिजल्ट हैं, जो आउटकम है, वो किस तरीके से होने वाले हैं। एपिसोड एंजॉय कर रहे हो भाई तो रेट करना बिल्कुल भी मत भूलना पॉडकास्ट को, और अभी रेसलमेनिया के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड आ रहा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। आयुष है मेरे साथ। सबसे पहले तो आयुष, मैं ये आज जो स्मैकडाउन में हुआ है ना, इस पर मैं चाहता हूँ अच्छे से बात करें पर्टिकुलर हर एक सुपरस्टार के बारे में, और शुरू करेंगे सबसे पहले सेथ रॉलिंस से। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आज के ये स्मैकडाउन में जो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर दिखा है, क्या अब भी रॉक के अकॉर्डिंग, मतलब रॉक के हिसाब से तो हमेशा वॉकिंग क्लाउन इमोजी है वो, लेकिन क्या सेथ रॉलिंस अभी वैसे लग रहे हैं या जबरदस्ती का बीच में उनका घुसना है ये अब भी?
सबसे पहले तो भाई मैं कुछ और बोलूँ, इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि लोगों को रोहित थैंक यू बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमारी स्टोरी तो ख़त्म हो गई कोडी से पहले। 3000 रेटिंग्स असली अखाड़ा की हो चुकी हैं कम्प्लीट। नेक्स्ट एपिसोड में आपको अगली स्टोरी का माइलस्टोन देंगे, लेकिन अभी आते हैं इस टॉपिक पे, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं। और सेथ रॉलिंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं तो ये बोलूँगा रोहित, मैं तो सीधा सवाल पूछूँगा अभी एक सेकंड के लिए, स्टोरी को साइड में हटाओ, इस टैग टीम मैच को साइड में हटाओ। एक तरफ है ड्रू मैकइंटायर जो अपनी ट्विटर की वीडियोज़ में भी इस समय सेथ रॉलिंस से ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे रहा है, और मुझे ना काइंड ऑफ शक हो रहा है कि ये बंदा इतने टाइम से मेरा फेवरेट सुपरस्टार था और ये वर्ल्ड चैम्पियन है, ना तो इसको इसकी एंट्रेंस मिली। आई डोंट नो क्या समझ के इसको दिखाया जा रहा है, पर चल क्या रहा है भाई। मतलब इस पूरी सिचुएशन में से अगर एक फ़ायदा मैं पूछूं सेथ रॉलिंस को क्या हो रहा है, तो वो एक फ़ायदा भी कोई है?
आई थिंक यहाँ पे हम दोनों के ओपिनियन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में, और अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आयुष उस पर कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो हमेशा ही ये लगता है कि सेथ रॉलिंस जो है इस स्टोरी में ज़बरदस्ती का घुसा पड़ा है, और वो ज़बरदस्ती का घुसा पड़ा है क्योंकि WWE को टैग टीम मैच करवाना है, क्योंकि उनको रेसलमेनिया में रॉक को फीचर करना है, क्योंकि रेसलमेनिया में रॉक को फीचर तो करना था लेकिन वो रोमन के साथ मैच नहीं हो पाया, जो शायद नेक्स्ट रेसलमेनिया में होगा। तो ये सबसे पहले बहुत बड़ा रीज़न है कि अब WWE को बस हमें रीज़न देने हैं कि सेथ रॉलिंस को इस स्टोरी लाइन में हमें क्यों डालना है और वो क्यों आए हैं, और उन्होंने बहुत लॉजिकल रीज़न भी दिया उसका कि वो ब्लड लाइन को तोड़ना चाहते हैं। अब वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है ड्रू का, जो अपने कैरेक्टर के हिसाब से हमेशा बहुत अच्छा रहता है कि भाई तेरे को उधर के लोगों में क्या मतलब है भाई, तू अपनी फ्यूड से ध्यान रख, तू फिर से मारा जाएगा। ये जो रॉक जो कि ऑलरेडी बोल भी रहे हैं सेथ रॉलिंस से कि चैंपियनशिप मैं तेरी ले लूँगा, तो ये तो हमेशा पॉइंट है। एक बस जरा सी चिंगारी उठे सेथ रॉलिंस के लिए कभी भी स्टोरी लाइन में, फिर सेथ रॉलिंस सच में वॉकिंग क्लाउन इमोजी लगते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सेथ रॉलिंस को इससे बेनिफिट भी हो रहा है, जैसे अगर सीधा ये क्वेश्चन है, क्योंकि सेथ रॉलिंस को रिंग शेयर करने का मौका मिल रहा है रॉक के साथ, रोमन के साथ, कोडी के साथ, जो कि हॉटेस्ट फ्यूड है। अगर वो सिर्फ ड्रू मैकइंटायर के साथ घुसे हुए होते, फंसे हुए होते, तो शायद इतनी ज़्यादा उनके बारे में बात ना हो रही होती और हमेशा कन्वर्सेशन का पॉइंट बनना होता किसी सुपरस्टार को, तो उस केस में सेथ रॉलिंस के लिए अच्छा है। एंड यस, चैलेंज का आंसर भी उन्होंने किया था, तो इतना भी बुरा नहीं है वैसे मेरे ओपिनियन में।
आई थिंक कहीं ना कहीं ये जगह CM Punk की होनी चाहिए, और क्यों नहीं है CM Punk, वो इंजर्ड हैं, बट आई थिंक कि अगर CM Punk इस रिंग में खड़े होते रॉक और रोमन के सामने कोडी रोड्स के साथ, अब मुझे रोहित से पूछना है कि क्या फिर एक सेकंड के लिए भी हम सेथ रॉलिंस को मिस करते?
बिल्कुल नहीं करने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस ये बैकअप प्लान जो भी सेथ रॉलिंस के साथ चल रहा है वो प्लान बी है, हमेशा ही प्लान ए CM Punk वाला था, और CM Punk के क्योंकि पुराने कनेक्शन है रॉक से तो वो ज़्यादा सेंस बनता। तो भाई अब देखो यार, जो है उसे देख लो, मतलब मैं तो इसी लॉजिक से देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ये भी नहीं कह रहा कि भाई सेथ रॉलिंस बिल्कुल ही चमक रहा है, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन जो वो अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, जैसे डायरिया ड्वेन लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन आज स्मैकडाउन में उनके लिए चैंट लगे थे, खुशी दिख रही थी सेथ रॉलिंस के चेहरे पर, तो ठीक है, मतलब अब चलो रॉक का मैच भी तो हो रहा है।
एटलीस्ट आई थिंक मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि चलो आज सेथ रॉलिंस ने स्मैकडाउन में कम से कम आके रॉक को बोला तो कुछ, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि वो क्लाउन की तरह ही पूरा एक्ट किया और फिर उसके बाद चले गए वहाँ से। आई थिंक आज की स्मैकडाउन एक बहुत रेयर शो है जहाँ पे कोडी लुक्ड मोर ऑफ अ क्लाउन देन देन सेथ, क्योंकि थप्पड़ के अलावा बाकी पूरे समय कोडी रोड्स ने कुछ किया नहीं इस सेगमेंट में। और रोहित, मैं इससे पहले हम सेथ से आगे बढ़ें, क्योंकि और जो तीन बंदे हैं वो मेन हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सेथ रॉलिंस, क्या अब इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि भाई हो गया काम, अब बस ख़त्म टाइटल?
आई थिंक जैसी डायरेक्शन, जैसी स्टोरी चल रही है, अगर मैं ब्लड वाले एंगल को हटा भी दूँ तो उधर से ड्रू मैकइंटायर बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो मैं ये क्यूरियस हूँ अभी से देखने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी तो खैर प्रेडिक्शन जब होगी तब और शायद जो फाइनल स्टेटमेंट है इसके ऊपर वो रिलीज होगा आएगा मेरा, लेकिन ड्रू मैकइंटायर को देखते हुए और ये ब्लड एंड वाली सिचुएशन देखते हुए मामला मुश्किल लग रहा है सेथ रॉलिंस के लिए। लेकिन सेथ रॉलिंस के सुपरस्टार के लिए खास बात यही हमेशा रहती है कि उसके पास टाइटल हो तब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब उसके पास टाइटल नहीं होता तब वो एक अलग ही सेथ रॉलिंस होता, तो मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है।
और इस पूरी सिचुएशन को इंटरेस्टिंग क्या WWE बना सकती है ये करके, और मैं पहले बोलूँगा कि इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। हमने इसके बारे में बात की कि अभी तक हम सेथ को क्लाउन बोल रहे हैं, बट क्या पता सेथ रॉलिंस ही वो बंदा हो जो सारी चीज़ को उल्टा पुल्टा कर दे एट रेसलमेनिया। रोहित, क्या पता सेथ रॉलिंस कॉस्ट कोडी रोड द टैग टीम मैच और उसके बाद वो बन गया एक ब्लड लाइन रूल्स मैच?
अगर ये होता है तो बहुत जस्टिफाइड होगा सेथ रॉलिंस का अभी क्लाउन बने रहना, क्योंकि फिर ये चीज़ें जो है इस ऐसे करके वैलिड हो जाएंगी सेथ रॉलिंस की, भाई मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, और एक्टिंग करते हुए बंदा कभी कभी क्लाउन लगता है क्योंकि उसका जो इंटेंशन है, जो पर्पस है वो अलग है, तो उनका पर्पस हो जाएगा सॉल्व। और अगर कोडी रोड्स के लिए वो पंगा खड़ा करना है रेसलमेनिया में, तो फिर तो भाई सेथ रॉलिंस के लिए ना जो रोमन रेंस वाली माला, एक माला उनके लिए भी बनाना, वो हर बार उसे एंट्रेंस में लेके आए, क्योंकि ये परफेक्ट गेम प्लान होगा उनका।
आई थिंक हमको अब आ जाना चाहिए रॉक के ऊपर, बिकॉज आज एंट्रेंस भी कुछ अलग थी। आई डोंट नो कि वो परमानेंट चीज़ है और क्या हो रहा था, वो बिजली गिर रही थी भाई रोहित।
ये मेरे को अभी हॉलीवुड रॉक के, अगर हम पुराने स्टोरी में जाएं तो वहाँ पर भी जब रॉक हैं उन्होंने अपनी कुछ इसी तरीके से एंट्रेंस करी थी, जब पहली बार वो अपना हॉलीवुड रॉक वाला पर्सोना लेके आए थे, नो वे आउट वो शो था, तो उस चीज़ को उन्होंने दिखाया दोबारा से। और रॉक जस्ट बीइंग द रॉक, बस ये उठा लो कि उनको रोल चेंज कर दिया है, और मतलब रॉक मेरे को यार पता नहीं अभी रेसलिंग, बस एक रेसलिंग मैच है जिसके बारे में मैं ज़्यादा खड़े नहीं होऊंगा डिफेंड करने के लिए, रॉक को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो जब होगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगा, पहले से कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर नहीं चल सकता। लेकिन बाकी हर चीज़ को उन्होंने मास्टर किया हुआ है और आज भी वो चीज़ दिखी थी। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आज भी बातें थोड़ी रिपीट मोड में थी रॉक की, और बस एक चीज़ उन्होंने अलग बोली थी, वो था कि भाई मैं बॉस हूँ तुम्हारा, और मैं आज एक तरीके से पहली बार इम्पैक्टफुल कोई चीज़ उन्होंने मतलब आज अपने प्रोमो से अगर मैं उठाऊँ तो वो यही था कि आज उन्होंने बिल्कुल खुलेआम इस चीज़ को शो किया। पहले उन्होंने बोला था कि वो सब कुछ करेंगे जो उनके पावर में है, जो जिस भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आज उन्होंने बॉस वाली टर्म यूज़ कर लिया, तो यानी कॉरपोरेट रॉक को उन्होंने इसमें डाल दिया अब स्टोरी में।
मतलब मेरे को ये जो एग्जैक्टली ये वर्ड बोला ना कि भाई रिपीटेड लगा, उससे मैं 100% एग्री करता हूँ, बिकॉज रोहित आई थिंक रॉक, मतलब हमने उनको एटीट्यूड एरा में या फिर बाकी टाइम पे, उस समय ऑब्वियसली लाइव हम नहीं देख रहे थे बैठ के, या शोज को वीकली फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन जितना हमने रॉक के बारे में सुना है, देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज को फॉलो किया है, रॉक के पास हमेशा वो क्रिएटिविटी थी एक टाइम पे कि वो कुछ नया लेके आते थे हर हफ्ते, कोई एक दो चीज़ें ऐसी उनके गिमिक में नहीं होती थी जो लोगों को हंसाती थी, एंटरटेन करती थी। मैंने सिर्फ गिन रहा हूँ, और ये कोई नेगेटिव नहीं है या फिर कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि रॉक बेकार है, बिकॉज ऑब्वियसली जब रॉक आए तो उनके अगेंस्ट हेट इतनी हो रही थी कि क्या कर दिया है पूरा ख़राब। आई डोंट थिंक कि इससे बेटर पिवट हो सकता था, इससे बेटर चेंज हो सकता था, और इंटरेस्ट काफ़ी हाई है मेरा भी इन दोनों मैचेस में। लेकिन कितनी बार रॉक ने वो रिपीट किया वॉकिंग क्लाउन इमोजी वाली चीज़, कितनी बार उन्होंने बाकी सारी बोली बातें कि भाई हम ये मैच के रूल्स रखने वाले हैं, ये सब चीज़ें करने वाले हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा कि बेकार था। लेकिन रोहित, कहीं ना कहीं हम बात भी रॉक की कर रहे हैं, और वो भी हॉलीवुड हील रॉक की, तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इंसल्ट्स जो, और मतलब रॉक से जो एक्सपेक्टेशंस है ना मेरी पर्सनली, वो और भी ज़्यादा हाई थी। कहीं ना कहीं ऐसा क्या WWE इसको बचा के रख रही है, या फिर यही है अब जो बेस्ट है?
यार देखो, ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल रॉक फैन बॉय होके मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रॉक ने अपना 21 मिनट का पूरा अपने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, बहुत सारी। अगर उसी बात को वो छोटे छोटे बातों में बोलते तो पूरी स्मैकडाउन की उनकी सारी अपीयरेंसेस निकल जाती। मुझे ऐसा लग रहा है, जो पता नहीं कैसा टेक होगा मेरा, लोग इस पर कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, कि ज़्यादा बेइज्जती नहीं करना चाह रहे वो जानबूझ के सेथ रॉलिंस और कोडी, क्योंकि ऑलरेडी सेथ की तो बहुत हो चुकी है, तो उनका कैरेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर रॉक ज़्यादा बोल दें, तो सेथ को भी मौका दिया रॉक के सामने बोलने का। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये कैसा लग सकता किसी को सुनने में, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि रॉक बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो नहीं बोल रहे, वरना सेथ तो इतना भाई घोंचू दिखेगा कि वो किसी लायक नहीं बचेगा फिर टैग टीम मैच के।
और आज भी रॉक ने स्मैकडाउन से पहले 11 मिनट की एक और वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, वो भी एक और प्रोमो है, उसके अंदर भी वो दोबारा वही सब बातें कर रहे हैं। आई डोंट नो, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ऐसा लग रहा है कि अब लीड कर रही है, और WWE के पास जो मेन स्टोरी थी, जो मेन तरीका है दिखाने का, अब वो ये नहीं है रोहित कि ये टैग टीम मैच हो रहा है, कि ये मेन स्टोरी लाइन है। ये चीज़ शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि WWE क्यों इसके अंदर इतना नहीं घुस रही, बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि इस टैग टीम मैच की वजह से रोमन वर्सेस कोडी के बारे में लोग भूल जाएं, बिकॉज वो नाइट टू WrestleMania 40 द ग्रेटेस्ट WrestleMania ऑफ ऑल टाइम का एक्चुअल मेन इवेंट है, और वो ख़त्म करेगा उस पूरी टू नाइट के इवेंट को। तो अगर ये टैग टीम मैच की हाइप ही इतनी ज़्यादा हो जाए और सारी ब्लड लाइन सब कुछ इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, तो रोमन वर्सेस कोडी में करेंगे क्या नाइट टू में? फिर मैं मान सकता हूँ बात कि उस मैच के लिए अलग से स्टोरी लाइन दिखाने के लिए WWE के पास टाइम नहीं है, 1-on-1 रोमन और कोडी की, लेकिन वो जब नाइट वन का मैच ख़त्म होगा तब तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज जो देखने को नहीं मिली, अब कल क्या होगा अगले मैच में, तो मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है।
आयुष, अगर तुम्हारा सवाल ये है कि रोमन और ये कोडी की अलग से कोई हाइप नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं WWE को उसके ऊपर उतना कोई फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये वाली फ्यूड हमने देखी थी तो उसमें क्या हुआ था, जो हमने पूरी ब्लड लाइन की अपने सीरीज़ में कवर भी किया, तो अपने नहीं देखी जाके तो पूरा देख लेना उसको, आखिरी एपिसोड के चीज़ों में हमने उसको डिस्कस किया, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा था नहीं WWE के पास। अब दोबारा से वही चीज़ वो दोबारा रिपीट वैसे भी नहीं कर सकते, और इनफ है, सिर्फ स्टोरी इतनी है कि क्या स्टोरी शुरू होगी या ख़त्म होगी या ओवर होगी या अनफिनिश होगी, फिनिश होगी, ये स्टोरी है। तो
मतलब मेरा बेसिकली जो पॉइंट है वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो टैग टीम मैच है राइट, उसको WWE इतना मेन फोकस नहीं बना रही, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम सिर्फ टैग टीम मैच को हाइप कर दें, जैसे अभी आज उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच भी है ये, लेकिन उसके बाद वो रुक गए, जैसे मेंशन की अभी ये बात की कैसे रॉक उस लेवल की बेइज्जती नहीं कर रहे कोडी और सेथ की, बिकॉज पता है बात कि कोडी और सेथ का भी एक वर्ल्ड टाइटल मैच है भाई नाइट टू पे, तो WWE नहीं चाहती कि टैग टीम मैच के चक्कर में वो दो मैचेस से बिल्कुल लोगों की नज़र ही हट जाए और सब कुछ ये टैग टीम मैच ही बन जाए इस साल WrestleMania का, तो मे भी वो चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करूँगा कि रॉक की जो परफॉर्मेंस है, आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत है, अभी WrestleMania में जो कहानी है वो बची हुई है, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और इससे पहले कि हम उस बंदे पे आएँ जो अपने भाई बहन से 20 साल छोटा है, वी विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस। और ये क्वेश्चन रोहित हम 2-3 पॉडकास्ट पहले भी बात कर रहे थे कि क्या रोमन रेंस का क्या हो गया, ये भाई नूब वर्ड यूज़ कर रहे थे अलग अलग चीज़ें कि छोटा भाई है वो क्या वो अभी भी चीज़ दिख रही है, क्या चल रहा है भाई रोमन रेंस के साथ? आज तो पूरी ब्लड लाइन ही बाहर चली गई रिंग के।
आज में अगर मैं देखो पिछले स्मैकडाउन में एक जो क्लियर विक्ट्री थी रोमन रेंस के लिए रॉक के अगेंस्ट में, वो था कि उन्होंने एक्नॉलेज करवा लिया। आज अगर मैं विक्ट्री की बात करूँ तो बस रोमन की विक्ट्री ये है कि भाई रोमन रेंस ने ना पहले प्रोमो की शुरुआत करी बोलना, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई कि उन्होंने रॉक के सामने पहले बोला था। और यार क्योंकि रोमन रेंस ने अपने ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस इतना ऊपर रखा है ना कि वो हजम नहीं हो रहा कि रोमन के बाद कोई बंदा आके एंट्री करेगा, लेकिन वो हजम करना पड़ेगा क्योंकि वो मेगा स्टार हॉलीवुड स्टार सबसे बड़ा स्टार रॉक है, तो वो अटपटा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी जितना बेस्ट हो सकता है मुझे लग रहा है WWE रोमन रेंस, इवन खुद रॉक भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रोमन रेंस तू ही है, तू ही ट्राइबल चीफ है, क्योंकि रॉक ऐसा नहीं कर सकते भाई कि वो अभी देखा जाए तो आउटसाइडर ही है एक तरीके से, क्योंकि WWE के साथ आगे तो वो ज़्यादा रहने नहीं वाले, तो वो WWE के किसी जो बिल्कुल सबसे मेन कैरेक्टर है उसको आके ऐसा नीचा सा दिखा दें। तो रोमन ने हंसी उड़ाई कोडी की कि भाई तेरे लिए ये बोल रहा है, बट क्या कर रहे हैं भाई, मुझे लगता नहीं, मतलब ये बेस्ट है जो रोमन रेंस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज भी करवा दिया, बंदा क्या ही करेगा घुटनों पर थोड़ी रखवा देगा रॉक को।
किस किस ने ये चीज़ नोटिस करी यार रोमन की, रोमन भी हंस रहे थे रॉक की एंट्रेंस ख़त्म नहीं होने को आ रही थी जब, कि भाई ये बंदा कब उतरेगा नीचे, भाई ख़त्म कर इसको, म्यूज़िक कब से चल रहा है, क्योंकि रोमन रेंस को आइडिया है, अपनी आदत है खुद की एंट्रेंस को वैसे देखने का, और आई डोंट नो वो इन कैरेक्टर था या फिर रोमन रेंस कैरेक्टर ब्रेक कर रहे थे वहाँ पर क्या था वो, लेकिन रोमन रेंस की जैसे हंसी छूट रही थी भाई रॉक की एंट्रेंस, मुझे लग रहा था अब कमर्शल भाई रॉक की एंट्री आज ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। लेकिन रोहित मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अब ना मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्यों WWE ने रॉक वर्सेस रोमन सोचा था, बिकॉज रोमन के कैरेक्टर के हिसाब से ना रॉक वर्सेस रोमन से बेटर कोई मैच नहीं था। अगर उस टाइम पे भले अब हमें हील रॉक ये सब देखने को मिल रहा है विच इज़ गुड, लेकिन अगर रॉक वर्सेस रोमन होता और रॉक एक बेबी फेस है, रोमन ट्राइबल चीफ है, तो वो जो रोमन को भगवान के लेवल पे लेके जा सकते थे और भी रॉक से लड़वाने से पहले, और मे बी रॉक को हरा भी देते रोमन, वो एक चीज है जो अब मिसिंग रह जाएगी अगर रोमन हार गए कोडी से।
आई थिंक इस वाले पॉइंट पे कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया, तो भाई आपको असली अखाड़ा पे सुनने को मिल रहा है कि अगर सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे किसी का हो रहा है तो वो रोमन रेंस का है, क्योंकि अगर रोमन और रॉक होता तो रोमन तो अपनी हमेशा चौड़ में रहते, फिर तो कोई ये सवाल भी नहीं उठता कि वो क्यों भाई रॉक के साथ चल रहे हैं, वो तो ट्राइबल चीफ है, फिर तो बिल्कुल ऑल आउट जाते रॉक के अगेंस्ट। तो आई थिंक रेसलमेनिया में शायद फिर वो एक विक्ट्री भी होती रोमन रेंस के लिए, फिर स्टोरी शायद और लंबी खींचती, फिर शायद रोमन रेंस को और फायदा होता।
अब मेरे को ना कहीं ये लग रहा है कि क्या टैग टीम मैच की जगह ये हो जाना चाहिए था कि पहली नाइट पे रोमन वर्सेस रॉक और उसका जो विनर होगा वो कोडी से लड़ेगा नाइट टू के मेन इवेंट
ये चलो भाई कोडी क्राई बेबीज के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कोडी क्राई बेबीज की बात चल रही है तो भाई कोडी के बारे में भी, आज तीनों के बारे में तो हो गई, आज कोडी ने आज उसका अपना बदला ले लिया है थप्पड़ मार के, आज तो भाई वाह चमक गया कोडी।
भाई जितना जितना मैं देख रहा हूँ सबका एक ही कहना है कि रॉक का चांटा और कोडी के चांटे में बहुत फ़र्क था। आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन मे बी रॉक का हाथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वो लगा दमदार थप्पड़ कोडी के मुंह पे, लेकिन बदला तो बदला था, थप्पड़ थप्पड़ होता है भाई, उसकी फोर्स फ्रिक्शन यहाँ पे मैं ये सब कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा किसका चांटा ज़्यादा धमाके वाला था। लेकिन आई थिंक आई डोंट नो मैन, मतलब मैं ना मतलब पागल होता जा रहा हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर की बात मैं दोबारा करूँगा जब मैं बोल रहा था कोडी को ही जीतना है, कोडी स्टोरी ख़त्म करेगा, और रोहित रोहित ऐसे था कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो आया, अभी नहीं करेगा, और अब एक साल बाद मेरे को अब हो चुका है वो सारा टाइम, 2 बार रॉयल रंबल जीत गए है वो, सब कुछ रॉक को थप्पड़ मार दिया, सब कर दिया, पर रोहित अब नहीं मुझे यकीन हो रहा कि ये बंदा हराएगा, जबकि आज बोल दिया गया उसको कि अगर तूने इस बार अपनी स्टोरी ख़त्म नहीं की ये तेरा आखिरी मौका है, क्यों करा ऐसा आज WWE ने बोल के।
तो ये जो बात अगर हम पिक करें सीधा कोडी ने जो आज कहा, कोडी के बारे में आज जो कहा गया कि रॉक ने बोला कि भाई ये तेरा आखिरी मौका है, अगर तू अब नहीं कर पाया तो इस टाइटल के लिए तुझे दोबारा शॉट नहीं मिलेगा। अभी हम पॉडकास्ट से पहले इसको डिस्कस भी कर रहे थे कि ऑल इलीट रेसलिंग नाम की जो कंपनी है जहाँ पर पहले कोडी रोड्स हुआ करते थे, वहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका मिला, के लिए कुछ ऐसा इम्प्लीकेशन स्टिपुलेशन आई थी उसमें कि ये मौका है गया तो गया, और उसके बाद कोडी रोड्स के पास से वो मौका चला गया और फिर वो कंपनी से भी चले गए। तो खैर वो चीज़ पहली बार के साथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो बात बोली गई है तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें तो नाइट वन की अगर पॉसिबिलिटी के ऊपर आए तो क्या इसका मतलब फिर ऐसा नहीं लग रहा कि नाइट वन में शायद कुछ ऐसा होने, क्योंकि नाइट वन का पर्पस होगा नाइट टू को हाइप करना, और नाइट वन का पर्पस तब सॉल्व हो पाएगा जब रॉक और रोमन रेंस की टीम मैच को जीतेगी, क्योंकि फिर उससे नाइट टू में प्रॉब्लम्स और बड़ी क्रिएट हो जाएंगी कोडी रोड्स के लिए अगर वो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच हो जाता है, और रॉक और रोमन रेंस टीम में आए हैं साथ में तो वैसे भी वो एक स्टार पावर इतनी है कि वो उनको मैच जितवाने के लिए इनफ हो जाएगी, पूरे ब्लड लाइन का इफेक्ट तो पहले नाइट के मैच में हो गई, तो फिर नाइट टू के ऊपर सारी वो चीज आ जाएगी। तो क्या ये रेसलमेनिया ऐसे फ्रेम नहीं हो रही कि नाइट वन में रॉक और रोमन रेंस की टीम जीत गई, इसका मतलब ब्लड लाइन रूल्स हो गया, ब्लड लाइन रूल्स हो गया, रॉक ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई कोडी के लिए आखिरी मौका है और अब निकलेगा भाई कंपनी का सुपर हीरो सुपरमैन बैटमैन जो भी मैन है कोडी मैन, और वो जीत जाएगा और स्टोरी फिनिश हो जाएगी, रोमन का टाइटल चला जाएगा, ये कहानी फिट नहीं हो रही कुछ।
बिकॉज रॉक विल टर्न ऑन रोमन,
आई थिंक यहां पे ये चीज भी प्लग की जा सकती है क्योंकि और सेथ रॉलिंस का भी टर्न, ये भी बात आ रही है,
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा उस बारे में, लेकिन अगला जो हम पॉडकास्ट बनाने वाले हैं जो पूरी रेसलमेनिया के अराउंड होगा कि क्या हाइप है, क्या ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया वॉट एवर, उसमें हम और भी ज़्यादा इस चीज़ को डीप में लेकर आएंगे। लेकिन रोहित मेरी मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर बात यह कि कोडी रोड्स इज़ गोइंग और वो रेसलमेनिया में जा रहे हैं रोमन रेन से लड़ रहे हैं, मेरे को तो ऐसा अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोडी जीतेंगे, और आई डोंट नो कि आज जो बात स्मैकडाउन में बोली गई वो क्या ऑफिशियली एक स्टिप्यूलेशन है या फिर रॉक ने सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए बात बोली कि भाई इस बार तू नहीं जीता तेरे को कभी नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि WWE ने ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोडी अगर हार गया तो दोबारा नहीं लड़ेगा।
अगर हम इस लॉजिक से सोचें तो आयुष फिर तो ये बात भी नहीं मान सकते हम कि ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रॉक ने स्टोरी में इस चीज़ को बोला है तो शायद उसका कुछ मतलब तो बनेगा, इस हिसाब से तो भाई जो मैच है वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो अब चलो ट्रिपल एच ने ट्वीट कर दिया इसलिए हम मान रहे हैं कि ऑफिशियल हो गया अभी। आई थिंक हाँ ये भी एक पॉइंट है कि क्या ब्लड लाइन रूल्स होगा, क्या कोडी वाली ये चीज़ होगी या फिर सिर्फ ये आज के प्रोमो को हाइप करने के लिए बोल दिए, इसके ऊपर भी फोकस जाना चाहिए लोगों का। और अगर
आई थिंक रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ब्लड लाइन रूल्स मैच तो चाहिए ही, बिकॉज कौन देखना चाहता है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस 1-on-1 नो इंटरफेरेंस यू नो, और मे बी हम अगले एपिसोड में भी बात करेंगे कि कैसे इस मैच के अंदर अगर ब्लड लाइन रूल्स हैं और कोडी के अगेंस्ट है सब कुछ और सेथ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, सेथ रॉलिंस अपना टाइटल हार चुका है, तो रोहित कोई तो मदद करेगा, अगर रॉक नहीं करे टर्न रोमन के अगेंस्ट तो बेचारा कोडी कैसे जीत जाएगा यार। लास्ट ईयर तो जीत नहीं पाया, और रॉक के आने के बाद भी कोडी कैसे जीत जाएगा।
मुझे लग रहा है आयुष अभी भी उस भ्रम में है जिस भ्रम में वो लास्ट ईयर थे। वो भ्रम था कि रोमन तो जीतेगा नहीं, कोडी जीतेगा, लेकिन अब भ्रम में जो रोल्स है वो स्विच हो गए हैं, तो शायद ये भ्रम टूट सकता है, लेकिन हु नोज़। रेसलमेनिया है सबसे बड़ा शो है, और मैं ये चाहूँगा लोगों से कि वो इसके बारे में अपनी जो वो है ना, जो उनके थॉट्स हैं वो बताएं, और स्पेशली सेथ रॉलिंस के बारे में भी, कि आपको क्या वो सच में वॉकिंग क्लाउन इमोजी लगते हैं, ये रॉक की भाषा में नहीं कह रहा। और आयुष एक बार पूछूंगा ये दोनों मैच के बारे में क्या फील है, अब हाइप लग रही है सिर्फ इस दो मैच को ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई आज की इस बार की रेसलमेनिया तो मस्त है।
देखो भाई, जैसा कि मैंने बोला, अभी हम एक पॉडकास्ट अलग से लाएंगे रेसलमेनिया की हाइप के ऊपर कि क्या मेरी फीलिंग्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आई थिंक अगर रेसलमेनिया में मैं दो मैच गिन रहा हूँ तो मुझे फ़िलहाल यही दो मैच रेसलमेनिया लग रहे हैं। अगर इन दोनों मैच को मैं हटा दूँ तो बाकी सारा कार्ड ऑनेस्टली तो
देन इट इज़ अ रेसलमेनिया बैकलैश।
एग्जैक्टली आई डोंट इवन फील कि वो रेसलमेनिया है। और इसी के ऊपर आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से हमने ट्रांजिशन लिया है, और आज की स्मैकडाउन रोहित जैसे ख़त्म हुई थी ऐसे ही हम फटाफट से ब्लैकआउट कर देते हैं। हाँ, बिकॉज इसके आगे की बात अगले एपिसोड में ही लोग सुने।
तो इसी के साथ असली अखाड़ा पॉडकास्ट भी जाता है ऑफ एयर। रेट ज़रूर कर देना, स्टोरी आपने फिनिश कर दी, लेकिन स्टोरी हमारी स्टिल कंटिन्यू रहेगी स्पॉटिफाई पे ग्रो करने की, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की। एंड हम मिलते हैं आपसे रेसलमेनिया वाले अगले असली अखाड़ा के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।